जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। कृष्ण कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
सायंकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत, और साथ साथ में इस सत्र में जो हमारे बीच में पधारे हैं, हमारे सीनियर राजयोगी आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी, इनका भी कर्तव्य ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आप कर्नाटक की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बेंगलोर से ही आपने ज्ञान प्राप्त किया और वहीं पर आप कई सारे सेवा केंद्र, माना उस साउथ इंडिया में कई सारे सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। जब आप ज्ञान में आए तब आप युवा काल में थे, अभी 20 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन आपका भगवान के प्रति प्यार, सेवाओं के प्रति लगन, जो तुरंत 2-3 साल के अंदर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया, तो हम कह सकते हैं आप पिछले 45 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और करीब 40 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं, और करीब 32-35 वर्षों से हेडक्वार्टर में बेस्ड है। 1982 से भ्राता जी हेडक्वार्टर में ही बेस्ड रहकर सेवाएं कर रहे हैं देश विदेश की। आप ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी हैं, और साथ साथ जो हमारी राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है, जिसके अंतर्गत कई सारी हमारी विंग्स है, उसमें से एक विंग है एजुकेशन विंग, उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं, और उस एजुकेशन विंग के अंदर जो बहुत सारी एक्टिविटीज चलती है वैल्यूज के प्रति, उसके समझो आप बैकबोन है। और कई सारे यूनिवर्सिटीज के साथ MOU किया हुआ है, आपको पता है ना हमारा कोर्स भी चलता है। तो उन दिनों तो एक यूनिवर्सिटी थी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, लेकिन आज की डेट में मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं पता, भाई जी बताइए, 14 यूनिवर्सिटी के साथ MOU किया हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे जो हेडक्वार्टर में जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आप ही मुख्य रूप से उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। बड़े बड़े जितने भी प्रोग्राम है वो आपकी उसमें प्रेरणा होती है। इतना ही नहीं, कई सारी छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री कहें या 3D शो देखा है किसी ने नीचे या ज्ञान सरोवर में, हाँ, तो उसके भी प्रेरणा स्रोत आप रहे हैं। तो आप बहु क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, हमेशा हर एक को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, हर एक की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो उसके लिए तैयार रहते हैं। आप स्वयं एक कर्मठ सेवाधारी है, हमेशा उमंग और उल्लास में रहते हैं। तो ऐसे अथक उमंग से सेवा करने वाले भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं और इनको सेवाओं का भी और ज्ञान की गहराई का भी बहुत अनुभव है। तो वो आज हमारे सामने रखेंगे कि कैसे इस ज्ञान योग को यूज करके हम जीवन का आंतरिक परिवर्तन करें, और वही आंतरिक परिवर्तन हमारे लिए सफलता की एक चाबी बन जाती है। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता जी से।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय गायत्री बहन, इंदिरा बहन और सभी प्रभु प्रेमी प्रिय आत्मा, मुझे बहुत खुशी हुई आप सभी मधुबन तपो भूमि में, अवतरण भूमि में, ईश्वरीय कर्म भूमि में अपनी स्व पहचान को प्राप्त करने के लिए, अपनी प्रिय बाप दादा को पहचानने के लिए और अपने हक और वर्षा को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वधर्म को जानना और उस पर चलने के लिए, ईश्वरीय शक्ति और वरदान को प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित है। आप सबको मेरे तरफ यादगार के साथ साथ बहुत 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 वधाई वधाई वधाई। अभी अभी मुझे कहा गया इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आंतरिक परिवर्तन। हम सभी चाहते हैं परिवर्तन करना। आंतरिक परिवर्तन क्या चीज है, उसमें थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। वास्तव में अभी हमारा पहचान है, व्यक्ति का पहचान कैसे होता है, कैसे होता है, है? व्यवहार से, कर्तव्य से, है? चरित्र से और कारोबार से, कर्मों से, ये बहुत सही है। परंतु वो आंतरिक दिन परिवर्तन क्या करना, हमको परिवर्तन भी क्या करना, आंतरिक परिवर्तन भी है। वो तो पहचान हो गया आचरण से, अभी हमको परिवर्तन किस चीज की परिवर्तन करना, अंतर है? अच्छा, अटैचमेंट को परिवर्तन करना, संस्कार को परिवर्तन करना। देन कौन सी संस्कार को धारण करना, जिसको, जिस संस्कार को हम परिवर्तन करें, चेंज करें, जिसके आधार से हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल हो, भविष्य हो, श्रेष्ठ हो, हमारा पहचान उसके आधार से हो। निमित्त भाव से सेवा करना वो अलग चीज है, ठीक, अच्छी बात है। और दूसरी कोई ने क्या, विकारों पर जीत पाना, दैवी गुण धारण करना बहुत अच्छी बात है। चाल चलन सही बात है। वास्तव में हर एक व्यक्ति का जो है पहचान जो उनकी संस्कार से संस्कार दर्शाते। इधर किस किस को क्रोध नहीं आते, हाथ खड़ा करें। भरे पड़े कि देखो बहन जी गारंटी ले रहे आप सबका। चलो भरे नहीं हो तो थोड़ा बहुत आ ही जाता होगा। क्रोध तो 100% सबके अंदर भर नहीं सकता, परंतु क्रोध छुपा हुआ होता है, कुछ न कुछ कभी कभी समय प्रति आ जाता, परंतु वो क्रोध से कितना नुकसान होता है। क्रोध कहाँ छुपा हुआ, अब कि हाथ में छुपा हुआ, पांव में छुपा हुआ, नयनों में छुपा हुआ, किधर छुपा हुआ? मन में, सोच में, संस्कार में, संस्कार में, दिमाग में। ये संस्कार जो है क्रोध एक है। किसी व्यक्ति को क्रोध आता है सबसे पहले किसकी चेहरा खराब होता है? खुद का। आर यू श्योर? अच्छा, हम सभी बुद्धिवान है, विवेकवान है, ज्ञानवान है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, आदि आदि पढ़ते हैं, फिर भी हम क्रोध करके अपने चेहरा खराब करते हैं, अपना ही चेहरा खराब करते हैं, अपनी क्रोध करके, और अपना साथ साथ में हमारा सामने वालों का भी चेहरा भी खराब करते हैं। ये मल्टीपल होता है ना, होता है, नहीं होता? ये कमजोरी है या स्ट्रेंथ है? आर यू श्योर? देन इस कमजोरी को परिवर्तन करना, इसके लिए विधि क्या होगा? ये कमजोरी है, पहले सबसे पहले इसको रियलाइज करना, ये एक कमजोर है, एक कमजोर संस्कार है, एक कमजोर सोच है। कई लोगों ने ये सोचते हैं हम क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। कभी कभी करना पड़ता है, ऐसा एक मानस बना दिया अपने में, एक बिलीफ हो गया, हम तो क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा, नहीं तो अधिकार नहीं चलेगा, सत्ता नहीं चलेगा, बच्चे नहीं चलते हैं, हम बच्चों को भी ऊपर क्रोध करना पड़ता है। वह अनेक प्रकार की एक विश्वास पहले मन में बैठ गया, उसी कारण से हमने समय प्रति समय क्रोध को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी रूप में एक्सप्रेस करते, शब्दों में, कर्मों में, बाद में वही क्रोध हिंसा में परिवर्तन हो सकता है, बहुत प्रकार की हिंसा की रूप होता है। आज संसार में सबसे ज्यादा जो है हिंसा व्यापक है वह नहीं है? घर घर में हिंसा है, चाहे वो हिंसा लाठी से मारना वही हिंसा नहीं है, बंदूक से मारना वही हिंसा नहीं है, किसी शब्दों में मारना वो सबसे बड़ा हिंसा है। वह शब्दों में भी नहीं तो संकल्प में भी करना वो भी हिंसा का एक रूप है, इज इट नॉट? हिंसा का बीज है वो हिंसा क्रोध का एक व्यक्त करने का बहुत रूप है। जहां क्रोध करते वो तो उस समय में हिंसा होता है, नहीं होता है? होता है ना हिंसा। जहां हिंसा है वहां क्या होता है? वहां दुख होता है, वहां पाप होता है, वहां विकर्म होता है, वहां अन्याय होता है। होता है नहीं होता है? जब अन्याय होता है तो उसको क्या होगा ना, जो अन्याय करने वालों को क्या करते हैं न्यायालय में? सजा देते हैं। खुद को अन्याय करने वालों को कौन सजा देगा? खुद की सजा होगा, परंतु खुद की सजा कैसे होगा? दुख होगा, खुशी गायब होगा, अशांति होगी, भय पैदा होगा और संशय जलम होगा। दूसरों के ऊपर संशयात्मक दृष्टि से देखते हैं और खुद भी अपने आप में निश्चय नहीं होगा, अपने भटकता रहता है, बुद्धि भी भटकता रहता। जो इस प्रकार की संस्कार है, जो कोई क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, वह नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक दृष्टि अपनाते हैं और हमने एक परमानेंट फीचर बना देते, वह सिद्धांत बना देते, फलाना वो ऐसा ही है, एक 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 सोच को बना देते हैं, ये बनाते हैं तो तब उसका हमारा सबसे पहले तो उनकी दूसरों के प्रति बना दिया, ठीक है, उस समय में हमारा संस्कार अच्छा होगा, हमारा स्वभाव अच्छा होगा, हमारा सोच अच्छा होगा, हमारा कर्म अच्छा होगा, हमारा संबंध अच्छा होगा, हमारा बोल अच्छा होगा, इसका दोषी कौन होगा? खुद की दोषी होगा। मगर हम खुद अपनी सोच के, अपनी सिद्धांतों से, अपनी कर्मों को, अपनी सोच को, अपने संबंधों को हम बिगाड़ता है तो उसको विवेकवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, योगी कह सकते हैं? कम से कम उस समय में अपना विवेक को खून कर दिया। दूसरों को खून करते हैं तो उनको खूनी कहते हैं, खुद का भी विवेक को खून कर दे, खुद के भी विवेक को खून करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? खुद भाई दुख, उसमें बहुत अनेक पाप कर्म का, पाप करने में का बीजारोहण हो जाता। उसका एक बार तो बीजारोहण किया और बार बार इसका करते रहेंगे तो आत्मा क्या बनेगा? पाप आत्मा बनेगा। देवात्मा बनने की बजाय, फरिश्ता बनने की बजाय, महान आत्मा बनने की बजाय, कल्याणकारी आत्मा बनने की बजाय, शांति दूत आत्मा बनने की बजाय, परोपकारी बनने की बजाय खुद में पाप आत्मा बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? आर यू श्योर बनेगा? ऐसा कौन कौन सोचते है, हाथ करके? चलो थैंक यू। क्योंकि ये पहले हमको रियलाइजेशन होना चाहिए। इसके साथ और भी चीज है, परंतु ये सभी हमारा सोच का एक पार्ट हो गया, एक हमारा बिलीफ सिस्टम का एक पार्ट है। हमने विश्वास कर दिया ऐसा ही हम करेंगे तो तब तो सुधरेगा, नहीं तो कौन सुधरेगा? और सारी दुनिया में ऐसे फड़े पड़े हैं, इसके लिए हम अकेले सुधरने से क्या होगा? अब ये सोचते हैं सारी दुनिया में ऐसे ही है तो हम अकेले सुधरने से क्या होगा? खुद भी मार खाएगा। परंतु ये भी एक गलत सोच है। हम सारी दुनिया में क्रोध से, नफरत से, ईर्ष्या से और भी अनेक चीजों से भरे हुए, नेगेटिव से भरे हुए है, इसके लिए हम तो छूट नहीं सकते, इसके लिए हमारा परिवर्तन होने से क्या होगा? ऐसा सोचना ये भी गलत है। ऐसा सोच करके अपनी सोच को जस्टिफिकेशन करते हैं, अपने संस्कारों को जस्टिफिकेशन करते हैं, अपने स्वभाव को जस्टिफिकेशन करते हैं, अपने कर्मों को जस्टिफिकेशन करते हैं, अपने कर्म को जस्टिफिकेशन करके हम तो उससे तो बेटर है, उससे तो ज्यादा किया, तो हमने तो थोड़ा सा किया है। ये जस्टिफिकेशन का आदत हो जाता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ 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 करके कहीं ना कहीं धोखा हो जाता, अपने आप को धोखा। अपने आप को धोखा होगा तो उसको कोई दूसरा मुक्त नहीं कर सकते, दूसरे लोग मुक्त कर। इसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन की आवश्यकता है। इसके लिए अपने संस्कारों का, आदतों का, बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है। इसके लिए बाबा ने इस संस्था में आने के बाद में सबसे पहले हमको शिक्षा करके अपनी आत्मा दर्शन किया, आत्मा का अनुभूति करें, आत्मा का आप सभी तो लेसन तो मालूम है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन में मैं स्वयं एक आत्मा हूं ये रियलाइज करें। वो रियलाइज करने के बाद में स्वयं की आत्मा का स्वधर्म क्या है वो भी रियलाइज करें, और साथ साथ में इस सृष्टि पर क्या लेके जाएंगे, क्या रखेंगे, हमारा साथ कौन सा चलेगा, हमारा परमानेंट वेल्थ कौन सा है, हमारा शरीर भी एक दिन छोड़ना ही है, हमारा साथ चलने वाला कौन सा है, हमारा संस्कार है, हमारा कर्म की फल है, हमारा कर्मों की फल हमारा साथ चलेगा, हमारा संस्कार के रूप में चलेगा, वो आगे भविष्य में भी संबंध के रूप में भी जोड़ सकता है, वेल्थ के रूप में भी जोड़ सकता है, हेल्थ के रूप में भी उपलब्ध हो सकता है। हमारा संस्कार ही अपने को हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को प्राप्त करने की विधि है। हमारा संस्कार खराब है, हम दूसरों को दोषित कर देंगे, मेरा हेल्थ वेल्थ बिगाड़ दिया, बिगाड़ने वाला हजार हो सकता है, परंतु हम सुधारने के लिए तो हमने विवेकवान तो होना चाहिए ना, बुद्धिवान तो होना चाहिए ना, ज्ञानवान तो होना चाहिए ना, और इसके लिए योग भी चाहिए ना। परंतु आजकल योग नहीं है, भोग ही लोग हो गए। जहां भोग है वहां रोग तो नेचुरल होगा, वो मन की रोग हो, शरीर की रोग हो, सामाजिक रोग हो, कई प्रकार की है, और उसके इस ये भी एक तरफ बीमारी है, और ये बीमारी का एक व्यापक विस्तार हो चुकी है। इसके लिए घोर कलियुग भी कहते हैं, और इस कलियुग को पाप की दुनिया भी कहते हैं। एक पाप नहीं, अनेक मल्टीपल पाप होते जा रहे हैं डेली। ऐसी समय पर हमको स्वयं रक्षा कौन करेगा? भारत सरकार करेगा, मिलिट्री करेगा, वह सिक्योरिटी पुलिस करेगा, वह हथियार करेगा, बहुत बड़े 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 हथियारों का आजकल भंडारा बना रहा है वो, उसका सिक्योरिटी कोई नहीं कर सकता है। अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना सोच को ही ठीक करना पड़ेगा, अपनी मन को ठीक करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को ठीक करना पड़ेगा, अपने स्वभाव को ठीक करना पड़ेगा, अपनी आदतों को ठीक करना पड़ेगा। इस ठीक करने के लिए अपने को कहीं ना कहीं सात शक्ति भी चाहिए। कभी बीमार होता है तो कोई दवाई भी चाहिए ना, बीमार एक फ्लू भी हो गया, कुछ भी होता है बीमारी कई भी प्रकार के, उसके लिए कुछ डॉक्टर की मदद भी चाहिए, कुछ दवाई भी चाहिए। परंतु दवाई और डॉक्टर कौन है मन की ठीक करने के लिए? एक बाबा की याद है, योग है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन ऐसी एक साधन है, आपकी मन को अपने आप को भी पहचान सकता है, अपने संस्कारों को पहचान सकता है, अपने वर्तमान को भी पहचान सकता है, अपना भविष्य क्या बनाना चाहिए उसका भी सोच सकता है, और बनाने की विधि में चलने का भी निर्देश आत्मा को मिलता है, और उसके आधार से अपनी हर सोच, अपनी हर कदम, हर बोल को परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए बाबा ने इस विद्यालय में आने के बाद में एक लक्ष्य दिया, अभी भी जीत चल रहा है, सोच का, जैसे सोचेंगे वैसे बनेगा, जो सोचेगा वो बनेगा ना, नहीं सोचेंगे तो बनेगा कैसे? आपको अच्छा डॉक्टर बनना सोचा तो तब तो बनेगा, पुरुषार्थ करेगा, उसकी शिक्षा प्राप्त करेगा। अच्छा इंजीनियर बनेगा सोचेगा उसके हिसाब से करेगा। ये सबसे बड़े इंसान में सबसे बड़ा ऊंचा कौन है? देवता है। डॉक्टर के ऊपर डबल ताज नहीं है, इंजीनियर के ऊपर डबल ताज नहीं है, नेता के ऊपर डबल ताज नहीं है, संतों के ऊपर डबल ताज नहीं है, ताज है उनके पास किसी के नहीं। डबल ताज है तो किसके ऊपर है? देवताओं के ऊपर। परंतु कोई देवता है सोचा होगा तब देवता बना है ना, अब उनको कोई शिक्षा प्राप्त हुई उसके लिए इतना ऊंच पद पाया, और उसको पूजनीय है, आज भी पूजा करते हैं ना आज भी, और क्यों उनका गुणगान आज भी करते हैं। परंतु यदि आप ऐसा सोचेंगे वो बनने के लिए सोचेंगे तो आप बन सकते हैं नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना, कौन कौन बन सकते हाथ खड़ा करें, वाह इनके लिए ताली बजाए, अपने आप को थाली बजाए, ये सोचना सबसे पहले हम देवता बन सकते हैं। नहीं तो अभी सोचना हम तो पापी है, नीचे कपट है, भगत है, ये है वो है, सोच सोच करके अपना पे और भी पाप बढ़ा दिया। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद में सबसे पहले आपका सोच को परिवर्तन करके एक जीवन का एक लक्ष्य पैदा किया, हम देवता बन सकते हैं। कौन बनेगा? आत्मा ही देवता बनेगा, शरीर तो नहीं बनेगा, परंतु आत्मा बनेंगे तो शरीर भी ऑटोमेटिकली बनेगा। कब बनेगा? जब आत्मा संपूर्ण बनेगा उसके बाद में चेंज होगा, परिवर्तन होगा उसके साथ साथ। अभी तो इस शरीर में बैठ करके हम सोच परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात आत्मा को परिवर्तन करेंगे, संकल्पों को परिवर्तन करेंगे, संकल्प के साथ साथ संस्कारों को परिवर्तन। देवता में कोई संस्कार ऐसा होगा तब तो उसकी इतनी ऊंच महान है, वो इतनी कर्म किया होगा, इसका फल उनके स्वरूप में दिखाई देता है। इसके लिए हमारा सोच को परिवर्तन करेंगे, हमारा लक्ष्य को, टारगेट को पहले ठीक बनाएंगे, और उसके अनुसार हमारा सोच, हमारा कर्म, हमारा बोल, हमारा आदत सब चेंज हो जाएगा। होगा नहीं होगा, इसके लिए सबसे आप लोग ऐसी विद्यालय में आए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय पढ़ाई, जिस पढ़ाई से इंसान कौड़ी से हीरे जैसे बन सकते, कौड़ी तुल्य जीवन, उसका जीवन को हीरा बना सकते, डायमंड बना सकते। डायमंड कब हो तो उसमें भी जो पत्थर है ना वो भी, परंतु उसमें धागा नहीं है, उसका डायमंड को कहां रखते हैं? मस्तिष्क में रखते हैं, डायमंड को वैल्यूबल चीज रखते हैं। ऐसी देवत्व देवताएं, ऐसा एक पवित्र आत्मा है, आत्मा पवित्र बन गया, उनको पवित्रता के कारण उसके डबल ताज है, एक उसके देखा ना दो दो ताज है, एक पवित्रता की ताज है, एक दूसरा प्रॉपर्टी वेल्थ के भी ताज है, सिंबल है इसको। कभी आपने देखा डॉक्टर की, उनको डॉक्टर की जरूरत है, देवताओं को कोई डॉक्टर था, आजकल छोटे मोटे गवर्नर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसके पीछे एक एम्बुलेंस सदा चलता है, है? आजकल तो घर करके डॉक्टर चाहिए, क्यों? कहीं ना कहीं मन की सोच भी है, बहुत बातें हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु बाबा कहते हैं आपको अपना आत्मा को शुद्धिकरण करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये विशेषता अपने आप को भरेगा। वो विशेषता भरने के लिए हमको योग की जरूरत है, ईश्वरीय संस्कारों की जरूरत है, ईश्वरीय संबंध की अनुभूति की जरूरत है, इसके लिए योग की जरूरत है। जितना आप योग करने का अभ्यास करेंगे व प्रयास करेंगे व उसकी परिभाषा पहचानेंगे, उसकी प्राप्ति को पहचानेंगे, उसका गुणों को पहचानेंगे, उसका उपयोग को पहचानेंगे और उसका कर्तव्य में निभाने के लिए प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे पवित्र आत्माएं अपवित्र बन सकता है तो अपवित्र आत्मा भी बन सकता है, बन सकता नहीं बन सकता? जब वाल्मीकि एक चंडाल था, बाद में ऋषि बन गया, बाद में बहुत वहां काव्य लिखने वाला बन गया, बना तो नहीं ना, तब बना, उनको रियलाइजेशन हुआ, परिवर्तन किया, उस परिवर्तन से उसने एक महाकाव्य भी लिख दिया, महा सोच। ऐसी आत्मा चेंज कर सकते, चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है यही परमानेंट है। क्रोध परमानेंट नहीं है, ईर्ष्या परमानेंट नहीं है, द्वेष परमानेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमने अडॉप्ट कर लिया। हम जीवन की यात्रा में कहीं ना कहीं सोच करके उसको हमने गलती को कॉपी कर लिया। ये आपका जन्म सिद्ध आया था क्या ये संस्कार? जब जन्म लिया था उसी टाइम में क्रोध साथ में आया था, वह वर्षे में मिला था, वर्षे में मिला था क्या आपको? नहीं मिला। हमने कहीं ना कहीं समाज की कमजोरी को हमने अपना लिया, ये समाज की कमजोरी हो सकता है और एक एक कल्चरल कमजोरी भी हो सकता है, कई कल्चर में ये समावेश हो गया, इसके लिए वो फलाना कल्चर में फलाना समय में फलाने लोगों में ऐसी करते थे, इसी कारण से इसका था, इसके लिए अभी हम करें तो भी क्या है, ऐसे एक हमारा सोच को बना दिया, एक गलत को कॉपी करके अपना प्रॉपर्टी बना दिया, अपना सोच बना, परंतु इस गलती को सुधारना, इसके लिए ईश्वरीय शिक्षा। इस शिक्षा में त्रिकालदर्शी बनाता है आपको, वर्तमान भी, अपनी गतकाल का भी, अपनी भविष्य को भी दर्शाता है ज्ञान। इसको कहते हैं ज्ञान से तीसरा नेत्र खुल गया, तीसरा नेत्र अर्थात आत्मिक भाव का, आत्मिक दृष्टि के, आत्मिक संकल्प की, आत्मिक सोच की, और आत्मा का पिता कौन है, जन्म जन्मांतर के पिता, हम तो एक जन्म के पिता की बातें करते व सोचते व समझते, वो ज्यादा से करके इसके ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर तक भी सोचते हैं, परंतु उससे भी ऊंचा आगे नहीं सोचते, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि लिमिटेशन, अभी वहां तक भी नहीं सोचते, कल तक ही सोचते हैं, थोड़ा एक जन्म में थोड़ा बहुत पैसे कमाना तक ही सोचते हैं, वह कुछ अन्य बात है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु ये सोच को बाबा ने परिवर्तन करके आपको खुद को देवता बनने का, देवता का गुणों को धारण करने का, देवता उनके अंदर कोई ना विशेष गुण है ना, उसमें विशेष गुण क्या है? सबसे पहले देवता में कौन सी गुण है? पवित्रता की गुण है, पवित्रता गुण है, उसी कारण से उनको अंग अंग को कमल पुष्प समान दर्शाते हैं। चरण कमल, हृदय कमल, मस्तक कमल आदि आदि कितनी बातें डिटेल में जाएंगे अलग बात, परंतु हमने वो संस्कार आत्मा में है तब तो उन्होंने जो सोचेगा वो सब कमल पुष्प है, जहां चलेगा उसका वहां कल्याणकारी बनेगा, उनका उसकी हर बात में, हर कदम में, हर कर्म में दूसरों को भी कल्याण समाया हुआ। इसके लिए ये सोच को परिवर्तन करना ही इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, संस्कार परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को प्रैक्टिकल संभव तब होगा। हम तो चलो सोच भी लिया, परंतु उसका प्रैक्टिकल में रूपांतर करने के लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए सहयोग भी चाहिए, इसके लिए ईश्वरीय संबंध चाहिए। हमारा देह का संबंध, देहधारियों के संबंध, प्रकृति के साथ संबंध और अन्य साधनों के साथ संबंध, ये आदि बहुत हमने देख लिया, अभी भी है, आगे भी रहेगा, परंतु परमात्मा के साथ का संबंध कैसे जोड़े? जब तक हम आत्मा ही नहीं बनेंगे तो परमात्मा के साथ संबंध भी नहीं जोड़ सकते, और परमात्मा की शिक्षा ही मालूम नहीं तो संबंध कैसे जोड़ेंगे? परमात्मा एक बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सखा भी है, परंतु वो उसका संबंध का अनुभव तब करेगा जब उनकी शिक्षा को जीवन में अपनाएंगे। शिक्षा तो एक दिन की बात नहीं हो, परंतु ये निरंतर अभ्यास की बात है, निरंतर शिक्षा को अनुभव करने की बात, और रेगुलर आप मुरली सुनने का आदत हो जाएगा तब तो आपको आंतरिक परिवर्तन अपने आप आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं जो मुरली निरंतर सुनेगा वो अपना योग में भी ताकत मिलेगा, योग नेचुरल हो जाएगा, और नेचुरल जब होगा उसका ऑटोमेटिकली आंतरिक परिवर्तन तो 100% संभव है। नहीं तो लोग कहते ये तो असंभव है, अपने आप को पहले ही हार देते हैं अपने आप को। परंतु मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं इसके क्रोध मुक्त, ईर्ष्या मुक्त, नफरत मुक्त, आवेश मुक्त, देहाभिमानी मुक्त और अनेक विकर्मों से मुक्त, पाप कर्म से मुक्त, दुख से मुक्त, भय से मुक्त, चिंता से मुक्त, रोग से मुक्त, इन सब का परम औषधि है योग। और वो योग तो बाहर की साधन नहीं है, इस शीर्षासन करने से और हाथ पांव ठांग हिलाने से वो योग नहीं, वो तो एक कुछ एक्सरसाइज है, शारीरिक एक्सरसाइज है, बुद्धि योग, उसको ज्ञान योग भी कहते हैं, क्योंकि आप बुद्धि से सोचते हैं, बुद्धि का परिवर्तन करते हैं, बुद्धि से अपनाते हैं, बुद्धि के आधार से निर्णय करते हैं, बुद्धि के आधार से हर कर्म करते हैं, इसके लिए बुद्धि योग। इसको ज्ञान योग, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान बढ़ता है तब तो इसको ज्ञान योग है, ज्ञान से समझ में आ जाएगा ये कर्म करने से इसका फल मिलेगा, कर्म जो कर्म करेगा उसका फल मिलेगा, किसका कर्म की फल को पता ही नहीं है किस कर्म से क्या फल करेगा। कल एक चोरी करने वाला भी चोरी करता है उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है, जो विकर्म करता है उसका कर्म के रिजल्ट पता ही नहीं है, वो समझते हैं हम कर्म करके हम कोई पकड़ ही नहीं सकते हैं। आजकल तो बहुत लोग हैं, बाबा लोग हैं, कर्म करके उसके परिणाम आप देख रहे हैं, परंतु कर्म की फल ही मालूम नहीं है वो सोचते हैं, परंतु भले न्यायालय पकड़ सकता है नहीं पकड़ सकता है अलग बात है, उसमें भी कई कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, परंतु अपने आप को नहीं छिपा सकते, अपनी मन को छिपा नहीं सकते, अपने आप को धोखा, ये तो अपने आप को धोखा हो गया ना, कई समय से अपने आप को धोखा हो गया, देन परिस्थिति उसको ऐसी परिस्थिति पैदा हो गया उसको कोई चुरा नहीं सकता। इसके लिए कर्म जो है सुधारने की विधि है ज्ञान। इसके लिए पहले कहते हैं परमात्मा का प्रिय आत्मा कौन है? ज्ञानी आत्मा बहुत प्रिय है, ज्ञानी तो आत्मा जो है परमात्मा का बहुत प्रिय है, उससे भी अति प्रिय कौन है? योगी तो आत्मा। इसके लिए हम तो ज्ञान भी रोज सुनना पड़ेगा, मुरली सुनना पड़ेगा, परंतु ज्ञान तो कोई दुकान में जाकर के पैसा देकर के खरीद तो नहीं कर सकते, खरीद करेंगे आजकल तो दुकानदारी के जो ज्ञान है, दुकानदारी का ज्ञान, क्या यूनिवर्सिटी की डिग्री भी कह दो, वो भी दुकानदारी का ज्ञान है। हाँ, वो मैं ये नहीं कहता हूं उसको नहीं पढ़ो, उसका वो ज्ञान तो कुछ नौकरी करने के लिए, कुछ सेवा के लिए, वो अलग चीज है। परंतु सच्ची ज्ञान जो है स्वदर्शन की ज्ञान है, आत्मदर्शन की ज्ञान है, कर्म दर्शन की ज्ञान है, योग्य जीवन की ज्ञान है, परमात्मा दर्शन की ज्ञान है, और इसकी संबंध की अनुभूति का ज्ञान है। यदि इस ज्ञान को आप रोज अपनाएंगे, ज्ञान ही शक्तिशाली बनेगा, ज्ञान ही दूरदर्शी बनेगा, ज्ञान ही ऑटोमेटिकली कुकर्मों से मुक्त होगा। कुकर्म से मुक्त होगा, नहीं होगा, और ऑटोमेटिकली ज्ञान मनुष्य को पाप कर्म से मुक्त करता है। ज्ञान जल, गंगा जल से नहीं, ज्ञान जल से शुद्धि होगा। गंगा जल से शुद्धि होना तो लोगों को एक दिन जाकर के सबको पानी में डुबो करके लेके आ सकते हैं। वो डुबो देंगे तो ना, सारा दिन पाप करो, रात में शाम को जाकर के गंगा जल में डुबकी डाल दो, और सारा जिंदगी में पाप करते रहो, गंगा जल में जाकर के एक बार हो सकता है क्या? अभी तो गंगा जल भी अपवित्र हो गया है, गंगा जल भी अपवित्र, परंतु ज्ञान से। परंतु वो ज्ञान तो कई किताबों में नहीं है, ग्रंथों में नहीं है, परंतु वो ज्ञान देने के लिए मैं इस सृष्टि पर आता हूं। मैं सब शिक्षक बन करके आपको इस धरती पर आता हूं, मैं ऐसी ज्ञान सुनाता हूं जिस ज्ञान से अपने कपाट खोलेगा, आत्मदर्शन होगा। वो ज्ञान ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान जो दिया जाता है वो ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, तीसरी आंख खोलने का ज्ञान है। और जिस ज्ञान को ही कर्म में यूज करते जाएंगे वो योग में परिवर्तन होगा। ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करेंगे तब आपको योग होगा। ज्ञान को, ज्ञान का एप्लीकेशन ही योग है। और ज्ञान को हम सिर्फ सुन लिया, एप्लीकेशन में नहीं ला रहे हैं, तब तो फायदा भी नहीं होगा। इसके लिए वो ऑटोमेटिकली, जितना ज्ञान होगा उतना ऑटोमेटिकली उनका जीवन एक योग युक्त जीवन, जहां योग है वहां ऑटोमेटिकली स्वरक्षण है, उसमें अपने संस्कारों की रक्षण है, और नया संस्कार को ऑटोमेटिकली बना सकता है। पूर्व दुखदायी संस्कार है, अन्याय की संस्कार है, धोखाधड़ी की संस्कार है, और अनेक प्रकार के, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो संस्कार को चेंज करने की जो विधि है योग, और वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा तो उसमें दैवी गुण आ ही जाएगा। दैवी गुण आ जाएंगे, क्यों? देवता कभी रोते हुए देखा नहीं? देखा, लोग सदा हर्षित रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। हम भी चाहते हैं सदा हर्षित रहे, सदा खुश रहे, हैं? कुछ लोग तो अंदर ही रोते हैं, कुछ तो बाहर रोते हैं, हैं? परंतु देवताएं कोई रोते हुए कभी देखा नहीं ना, क्योंकि हम आत्मा पवित्र बनेंगे, रोग से, दुख से, रोने से मुक्त हो गया, नो टीयर्स बट ऑलवेज चीयर, खुशी, खुशी चेहरे पर खुशी। आत्मा शरीर में है तो आत्मा का ऑटोमेटिकली वो गुण व्यक्त होगा ना, चीयरफुल रहेगा। परंतु वो चीयरफुल कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ जन्म के लिए नहीं रहेगा, इट इज यवर, अनेक जन्म जन्मांतर के लिए आपका संस्कार, अपना सोच बन जाएगा, वही आपने सदा हर्षित रहे। छोटे बच्चे भी आपके सामने खुश होकर के आता है, हम क्या कहेंगे उसको? वो देख करके हमारा अंदर खुशी आता है, ऐसा मन कहता है उसको उठाऊं, उसको गोद में खेलूं, है? कुछ तो आता है ना, आपके प्रेरणा देता है ना, नहीं देता है? और अपना भी रोना हो तो भी दुख थोड़ा क्षण के लिए कम हो जाता है, और दुखी आत्मा को देख करके दुखी हो जाते हैं, भले आप कितने भी रहम दिल भी हो सकते, परंतु ये एक कंटीजिनियस डिसीज है, कहो वह एक भी अच्छी चीज को हम कितने भी विस्तार करेंगे उसको हमारा कर्म की फल के रूप में मल्टीप्लाई होते जाएगा, आशीर्वाद के रूप में मिलेगा, और उसका फल के रूप में मिलेगा, उसके लिए ब्लेसिंग के रूप में मिलेगा, इसके लिए ऐसी चीज तो जितना भी मल्टीप्लाई करो उसका हमारे को ऑटोमेटिकली भाग्य मिलेगा। अगर उसके लिए ऐसी कर्म करें जो अपने को सदा भाग्य बनाने का विधि बन जाए। आपको बैंक में कुछ जमा कर दिया, आपका इंटरेस्ट जमा हो रहा है, आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऐसे आपका खुशी अनेक आत्माओं को खुशी प्रदान करते हैं। वो खुशी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपके मन में सदा दूसरों के प्रति शुभ भावना है। शुभ भावना कौन सोचते हैं? अच्छे आत्मा जितने होगा, पवित्र आत्मा होगा, श्रेष्ठ आत्मा होगा, उतना ही कल्याणकारी आत्मा होगा, तो अच्छा शुभ भावना होगी। और शुभ भावना एक जगह में बैठे आप सारे विश्व तक सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते कहीं भी हो, परंतु वो शुभ भावना आपके लिए एक कवच हो जाए, वज्र कवच। और वो अपने के लिए भी होगा, दूसरों को भी होगा, क्योंकि आपका सोच एक शक्तिशाली सोच हो जाएगा। वो सोच दूसरों के लिए प्रेरणादायक होगा, दूसरों के लिए एक शक्ति के रूप में, वरदान के रूप में होगा। परंतु आजकल सोच कमजोर है, इसी कारण से लोग तो एक दूसरे से डर ज्यादा हो गया, भय ज्यादा हो गया, संशय ज्यादा हो गया। ये संशय, डर, भय, अस्थिरता, ये सभी क्या दर्शाता है? पाप आत्माओं की संख्या बढ़ गई, उनका कर्म भी बढ़ गया, उनकी व्यवहार भी ऐसे बढ़ गए। परंतु हम इस पाप की दुनिया को पवित्र दुनिया, पुण्य आत्माओं की दुनिया, देवात्मा की दुनिया के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं, हाथ करा करें। अच्छा, दूसरों को थोड़ा डाउटफुल है, भले आप नहीं कर सकते हैं, परंतु बाबा की जो संबंध है, बाबा की शिक्षा है, बाबा की वरदान है, उनकी अंगुली तो पकड़ सकता है। आप खुद नहीं कर सकते, उसको अंगुली तो पकड़ सकते हैं ना। अंगुली कौन कौन पकड़ सकता है, हाथ खड़ा करें। इसके लिए बहुत अच्छी बधाई आपको। आप इतना ही कर दो, उसकी अंगुली पकड़ लो, अपने को बाबा को मेरा बाबा बनाओ। परंतु आजकल दुनिया बाबा का शब्द भी कर अपवित्र बना दिया। इतनी श्रेष्ठ संबंध की, श्रेष्ठ शब्द की, श्रेष्ठ भावना की, श्रेष्ठ वरदान की को भी कुछ लोग तो उसका कर दिया। परंतु मेरा अपना है, शिव बाबा को अपना बाबा बनाओ, ब्रह्मा बाबा को अपना साथी बनाओ, दोनों बाप दादा को अपना साथी बनाओ, आपका जीवन काल देखो। इसके लिए तो पैसे की जरूरत नहीं है, आपका सोच की परिवर्तन चाहिए, फीलिंग की जरूरत। उसका श्रीमत को फॉलो करना। परमात्मा क्या कहते हैं, बच्चे आपको देहाभिमान को छोड़ो, पवित्रता को अपनाओ, दैवी गुणों को धारण करो, दूसरों की शुभ भावना रखो और रोज मेरा महावाक्य सुनो। क्यों सुनो? आपका बुद्धि अपवित्र हो चुका है, इसके लिए पवित्रीकरण करने के लिए महावाक्य है। हमने देखा, हमारा दादी प्रकाशमणि जी, हमारा मम्मा दादी, दो जो भी है दादियां, आज हमारा जानकी दादी 102 इयर्स है, इस उम्र में भी वो रोज मुरली सुनती है, सुनाती है, कभी मिस नहीं किया। हमारा दादी प्रकाशमणि मैंने लास्ट तक देखा, रोज चार बार मुरली पढ़ती थी, सुनाती थी, लोगों को प्रेरणा देती थी। वो आते ही ऐसा लगता है आत्मा एक लाइट हाउस आ गया आदमी। परंतु वो लाइट हाउस कैसे बनी? उन्होंने भावाक्य, हर महावाक्य को सुनते हुए अपनाया और दूसरों को भी अपनाया, और उसी कारण से आज उनका इस संस्था में पहचान है और आज भी हमारा सम्मुख में है। परंतु ये काम उन्होंने किया, परंतु वो काम हम भी कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। और वो करने के लिए विधि यह बताया जाता है, परंतु उसको ही श्रीमत कहते हैं। श्रीमत को माथे पर रखो, अर्थात बुद्धि पर रखो, बुद्धि में रखो, संकल्पों में रखो और दृढ़ संकल्प करो, हम बाबा के श्रीमत को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाएगा। जो इंसान नहीं बन सकता, बना नहीं सका, वो हमको बाबा बना देगा। और एक दिन आपको ऐसे जीवन में अनुभव करेगा हम दुख धाम में भी सुखी है, भाई की दुनिया में भी निर्भय है, अशांति की दुनिया में भी शांति है, अपवित्रता की दुनिया में भी पवित्रता की अनुभव करेंगे। हम उसके गोता नहीं खाएंगे, ऐसी वातावरण में भी आपको खुशी का अनुभव करेंगे। उसको देख करके दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगा, दूसरों को भी ओम शांति मंत्र का अर्थ समझ में आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। जिस दिन इस यात्रा शुरू किया था बाबा ने अकेला ही था, लोगों ने उसको बहुत परिस्थितियां पैदा किया, वो अलग चीज है हिस्ट्री, परंतु फिर भी बाबा ने अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ा, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। आज उसका विस्तार रूप हम देखने को मिल रहा है ना। वन सोल हैज बिकम वन मिलियन सोल्स की यात्रा हो गई, परंतु हम सभी जुड़ जाएंगे, हम सभी वो कर्म करेंगे तो हमारा देश क्या होगा? दैवी स्वराज हो जाएगा, दैवी राज हो जाएगा, अपना ही राज हो जाएगा। अभी तो हम सब गुलाम की दुनिया में बैठे, हम तो कोई ना कोई अपनी कुकर्मों का भी गुलाम है, कर्म रोज उनको सिर पर ऐसा नाचाता है, उसका बुद्धि एक सेकंड भी एकाग्रता होने नहीं देता है। बुद्धि एक सेकंड भी एकाग्र नहीं हो सकता है, ऐसी उसका बुद्धि भी, अपना बुद्धि भी अपना कंट्रोल में नहीं है। तो कहते हैं बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत मैं एकाग्र नहीं कर सकता हूं। ये सभी बातें जब सुनते, क्योंकि आत्मा में अंदर शक्ति कम हो गया, ज्ञान की कम हो गया, गुणों की कमी हो गया, और उसको कहां लगाना बुद्धि को वो ठिकाना नहीं है। वो ठिकाना ठीक करने के लिए भी उनकी शक्ति नहीं है, इतनी कमजोर आत्मा हुई है, उसी कारण से वह वायुमंडल बना। उसके लिए संशय और भय पैदा हो गया, पता नहीं किस घड़ी में क्या कर देगा, किस घड़ी में क्या करेगा पता नहीं ना। ये वातावरण सारी दुनिया में एक वायुमंडल बनते जा रहे नहीं जा रहे, ऐसी वायुमंडल बन रहा है। इसके लिए ऐसी दुनिया में भी आप तो एक नक्षत्र की तरह, एक लाइट हाउस की तरह, एक सर्च लाइट की तरह बन सकते हैं, उनको भी सकाश दे सकते हैं, उनको भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। उसका अभ्यास आपको यहां मिलता है, उसमें ऑटोमेटिकली उसमें स्वयं रक्षा हो जाएगा, दूसरों को भी रक्षा कर सकते हैं। ऐसी रक्षा करने की विधि को सीखना है तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मतलब सारी मंतबों में रहने की बात नहीं, अपने जीवन को एक विद्यार्थी बनाओ, अपने घर को एक गृहस्थ आश्रम बनाओ। वैसे तो अभी तो गृहस्थ आश्रम के बजाय गृहस्थ श्रमाश्रम हो गया, श्रम करने का ही विधि हो गया। इसके लिए चेंज कर दे तो अपने मन को ऑटोमेटिकली आपकी वर्तमान और भविष्य एक बहुत उज्जवल बनेगा, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपको गारंटी दे सकते हैं। परंतु उसका कदम आपको ही करना पड़ेगा, कदम अर्थात संकल्पों के कदम, दृढ़ता की कदम, और सोच की कदम, और विश्वास की कदम, इस कदम निश्चय की कदम, इस कदम आपको उठाना पड़ेगा। और उठा के थोड़ा चंद दिन चलो, आपका अनुभव ही आपको आगे ले जाएगा, आपका अनुभव आपको गाइड करेगा। हाँ ये सही है, ये इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो मुझे एक दिन पहुंच जाएंगे। ऐसे चलने वालों को, ऐसे विश्वास करने वालों को, ऐसे संकल्प करने वालों को, ऐसे परिवर्तन लाने वाले आप हरेक प्रत्येक प्रभु प्रेमी योगी आत्मा को पुनः मेरा यादगार के साथ साथ नमस्ते ओम शांति। ठीक है, फ्रेंड्स को उनको मैं बचपन से ही जानता हूँ, बहुत अच्छी है, इसके लिए बहुत बहुत उसको देखते हैं तो मुझे खुशी होता है, है? अभी तो इतने बड़े ग्रुप को लेकर आए तो मुझे देख करके बहुत आनंद हो गया।
फर्स्ट ग्रुप था 1978 में, ऑफिशियल प्रोग्राम था पहले ग्रुप में। इनके ग्रुप वाले बहुत बहुत देश विदेशों में बड़े बड़े टीचर्स भी बन चुके हैं, तब से लेकर के इन्होंने हिम्मत करके देखो आगे बढ़ा, तो मुझे आप जैसे लोगों को भी उद्धार करने के निमित्त बन गए। यह कितनी बड़ी बात है, निमित्त तो बन गए ना, बड़ी बात है। हिम्मत दिलाने के लिए कोई तो रास्ते में चाहिए ना। बाबा तो दिशा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, परंतु उसको एक निमित्त मात्र मार्गदर्शन करने के लिए, गाइड करने के, फेलिसिटेट करने के लिए भी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है गायत्री बहन को देखते हुए, वधाई हो, वधाई हो।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय मितुजन भाई जी, आप यहाँ आके आपने इतने सरल शब्दों से आंतरिक परिवर्तन के बारे में हमारा ज्ञान दर्शन किया। यहाँ उपस्थित सब आत्माओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति। भाई साहब को बहुत बहुत मुबारक भी हो, सबकी तरफ से बधाई हो और शुक्रिया भी हो। क्लास सुन रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ही एक्सपीरियंस क्लास सुन रहे हैं, है ना। फर्क होता है, एक एज अ फैकल्टी हम ज्ञान सुनाता है कोई, और एक होता है कि अपने जीवन के पल पल के अनुभव होते हैं। तो आप सोच सकते हैं उम्र से भी सीनियर है तो ज्ञान में भी सीनियर है, तो काफी सेवाओं में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस किए हैं। तो उस हिसाब से कितनी बाधाएं, कलयुग के अंत में सेवा करना क्या आसान है? हाँ बताओ, बुरा काम करना आसान है पर अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है। तो कलयुग के अंतिम समय में शिव बाबा की सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना एक बहुत ही, उसमें तो बाबा का साथ है, इसीलिए सब लोग सफलता को पा रहे हैं और सब लोग चल पा रहे हैं। ऐसे में हमारे जैसे जो सीनियर भाई बहन है उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कितना योगदान हो सकता है। तो बचपन से हम तो देख रहे हैं भाई साहब को, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में आप एजुकेशन विंग के कारण बहुत ही प्रेरणा देते आए हैं और आगे बढ़ाते आए हैं। अनामलाई यूनिवर्सिटी में भी कोलाबाग को पीसीपी सेंटर बनाया था, और आज भी अभी कॉन्फ्रेंस हमारी 80वां वार्षिकोत्सव में भी कोलाबाग सेंटर की तरफ से, याद है ना, हमारा मोनिका बेन का डांस ड्रामा हुआ था। तो ऐसे ही कोलाबा सेंटर को हमेशा ही प्रेरित करते रहते हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से कोलाबा आने का इनविटेशन देती हूँ। बहुत समय से आए नहीं है, जब जब बॉम्बे आए तो इतने बिजी होते हैं कि आना होता नहीं, तो स्पेशल कोलाबा सेंटर आने का, हम सब भाई बहनों को रिफ्रेश करने का आप सबको बहुत बहुत इन्विटेशन है। थैंक यू, ओम शांति।